आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 2024-25 के मरकजी बजट के बाद की कॉन्फ्रेंस से विकसित भारत की जानिब सफर के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन तलबा के कुंभों को 10-10 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया है जिनकी एक कोचिंग सेंटर में पानी में डूबने से मौत हो गई थी। क्वाड के वज़राए खारजा ने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद समेत अक्वाम मुत्तहदा की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ बैन अल-अक्वामी सतह पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। भारत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हैती को 9 टन तिब्बी सप्लाई रवाना किया है। पैरा तैराक जिया राय दुनिया की ऐसी सबसे कम उम्र और सबसे तेज खातून पैरा तैराक बन गई हैं जिन्होंने कामयाबी के साथ तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया। और भारत की निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह आज पेरिस ओलंपिक में भारत के दूसरे तमगे के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम मुकाबले में हिस्सा लेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मरकजी बजट 2024-25 के बाद की कॉन्फ्रेंस से विकसित भारत की जानिब सफर के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भारतीय सनतों की कॉन्फेडरेशन CII कर रही है और इसका मकसद इस कोशिश में तरक्की के लिए सरकार के वसीतर नजरिए और सनत के रोल का खाका पेश करना है। इस कॉन्फ्रेंस में सनतों, सरकार, सिफारती बिरादरी और दानिश्वराना हलकों के 1000 से ज्यादा मंदूबीन वहां मौजूद रहकर शिरकत करेंगे जबकि कई दीगर शुरका मुल्क भर में CII के मुख्तलिफ मराकज और बैरून मुल्क से भी वर्चुअल वसीले से इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने उन तलबा के कुंभों को 10-10 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया है जिनकी कौमी राजधानी दिल्ली के IAS कोचिंग सेंटर में पानी में डूबने से मौत हो गई थी। IAS के 3 उम्मीदवार तलबा की हफ्ते को ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से मौत हो गई थी। झारखंड में आज सुबह चक्रधरपुर डिवीजन के तहत बड़ा बाम्बू और खरसावां रेलवे स्टेशन के दरमियान हावड़ा मेल मुंबई मेल रेलगाड़ी के 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने के सबब कई मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। ये रेलगाड़ी हावड़ा से मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जा रही थी। रेलवे के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि जख्मी मुसाफिरों को मुकामी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। बचाव और इमदादी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जो इस तरह से हैं: टाटा नगर के लिए 06-57-22-90-324, चक्रधरपुर के लिए 06-58-72-38-072, रांची के लिए 06-51-27-87-11 और हावड़ा के लिए 09-43-33-57-920। क्वाड के वज़राए खारजा ने लश्कर ए तैयबा जैश मोहम्मद के साथ साथ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट तंजीम समेत अक्वामे मुत्तहदा की फहरिस्त में शामिल सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ बैन अल-अक्वामी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है और उन दहशतगर्दों को नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के खिलाफ खबरदार किया है। कल टोक्यो में अपनी मीटिंग के बाद एक मुश्तरका बयान में क्वाड के वज़राए खारजा ने कहा है कि वो बैन अल-अक्वामी और इलाकाई शराकत दारों के साथ मिलकर काम करने के लिए अहदबस्ता हैं ताकि दहशतगर्दी के मकासद के लिए नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों के इस्तेमाल से पैदा होने वाले खतरात को रोका जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, अमरीका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी ओंग और जापान के योको कामिकावा ने अक्वामे मुत्तहदा की फहरिस्त में शामिल सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने के अज़्म को दोहराया है। मुंबई के 26/11 और 2016 के पठानकोट के दहशतगर्दाना हमलों का जिक्र करते हुए इन लीडरों ने इन हमलों की साजिश करने वालों को बिला ताखीर कैफरे किरदार तक पहुंचाने का भी मुतालबा किया है। भारत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हेती को 9 टन तिब्बी सप्लाई रवाना की है। ये खेप कल नई दिल्ली से पोर्ट ऑफ प्रिंस के लिए रवाना हुई। इसमें दीगर साजो सामान के अलावा खून चढ़ाने, रैपिड टेस्ट और इलिसा के लिए जरूरी सामान शामिल हैं। उड़ान स्कीम के तहत 13 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एरोड्रोम्स समेत 85 हवाई अड्डों को मजबूत करने वाले मुल्क में कुल 579 रूट्स को चालू किया गया है। शहरी हवाबाजी के वजीर ममलिकत मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में इस बारे में मुत्तला किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में 21 नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे कायम करने की खातिर उसूली तौर पर मंजूरी दे दी है। इनमें से 12 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे गुज़श्ता 10 बरस में चालू किए गए हैं। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली के IIT में आइडियाज फॉर लाइफ का आगाज किया, जिसका मकसद उन अशिया और खिदमात से मुतालिक नजरियात और इख्तराआत को मदऊ करना है जिनसे माहौल के लिए साजगार तर्ज जिंदगी की खातिर तरगीब मिलती है। उन्होंने तलबा, रिसर्च स्कॉलर, असातिज़ा और इख्तराकारों से नए नए नजरियात पेश करने पर जोर दिया, जिनसे सोच समझकर और किफायतशियारी से वसाइल के इस्तेमाल के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए को हासिल किया जा सकेगा। इस तकरीब से खिताब करते हुए जनाब यादव ने कहा कि इस पहल का मकसद तलबा, असातिज़ा और रिसर्च स्कॉलरों को आलमी पहल मिशन लाइफ के लिए अपनी इख्तराई नजरियात पेश करने की खातिर हौसला अफजाई करना और तहरीक देना है। वजीर मौसूफ ने कहा कि लोग अपने नजरियात ideasforlife.nic.in पर जाहिर कर सकते हैं। वजीर ममलिकत कीर्ति वर्धन सिंह और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं।
हमारी मिनिस्ट्री ने आइडिया फॉर लाइफ इनिशिएटिव शुरू किया है। 45 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के सभी यूनिवर्सिटी से, IIT से, IIM से, NLU से 7 बड़े इश्यूज पर, वाटर को सेव करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ई वेस्ट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए, रिसाइकिल के लिए, सॉइल के लिए, अलग अलग हमने आइडियाज आमंत्रित किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे यूथ, हमारे इंस्टीट्यूशन मिशन लाइफ के साथ जुड़ करके अपने आइडियाज दें।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से दायर करदा उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, जिसमें जमीन के मुबैना घपले से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में वजीर आला हेमंत सोरेन की जमानत मंजूर करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। जस्टिस BR गवई की सरबराही वाली बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट के हुक्म के साथ इस मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है, जिसने कुछ शराइत पर 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दी थी। जेल से अपनी रिहाई के एक हफ्ते के बाद जनाब सोरेन ने इस माह के शुरू में तीसरी मर्तबा के लिए झारखंड के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अदालत उज़्मा के सामने एक खसूसी लीव पिटीशन दाखिल की है, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि वजीर आला सोरेन की जमानत मनसूख की जाए। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा 3 से 4 दिनों में मुल्क के ज्यादातर शुमाल मगरबी हिस्सों में मानसून के सरगर्म रहने की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक मानसून सरगर्म है और असल सतह समुन्द्र में अपनी मामूल की पोजीशन जुनूब से उसके आइंदा 3 से 4 दिनों में आहिस्ता आहिस्ता शुमाल की जानिब बढ़ने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट।
मानसून के सरगर्म होने के जेरे असर आइंदा 4 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मगरबी राजस्थान में दूर दूर तक बारिश और कहीं कहीं शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा कुछ दिनों में मुल्क के मगरबी, वस्ती, जुनूबी जजीरनुमा हिस्से और मशरकी और शुमाल मशरकी हिस्सों में कहीं कहीं शदीद बारिश के साथ दूर दूर तक बारिश की भी पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले माह की 2 तारीख तक सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर और उड़ीसा में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश हो सकती है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
کیرالہ کے کئی حصوں خصوصاً ریاست کے وسطی اور شمالی ضلعوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے. وائناڈ، ادوکی اور پلکڑ ضلعوں میں مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعات پیش آئے ہیں. وائناڈ میں آج صبح سویرے مڈیکل علاقے میں مٹی کا تودا کھسکنے کا واقعہ پیش آیا. آتاملہ اور مڈیکل علاقہ ضلع کے باقی حصوں سے پوری طرح کٹ کر رہ گیا ہے. اب تک 8 افراد کی جانیں تلف ہو چکی ہیں. مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا امکان ہے. 40 زخمی افراد کو اسپتال میں شامل داخل کیا گیا ہے. وینزویلا میں سیکیورٹی فورسز نے متنازع انتخابات کے نتائج کے خلاف مظاہرہ کرنے والے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا. ہزاروں لوگ سینٹرل کاراکاس میں جمع ہوئے اور انہوں نے کل شام صدارتی محل کی جانب مارچ کیا. اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو گرد و نواح کی پہاڑی بستیوں سے طویل سفر کر کے وہاں پہنچے تھے. یہ مظاہرے صدر نکولس مدورو کی انتخابی جیت کے اعلان کے بعد شروع ہوئے تھے. البتہ اپوزیشن نے مدورو کے دعوے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے امیدوار ایڈمنڈو گونزالیز کو بھاری ووٹوں سے فیصلہ کن جیت حاصل ہوئی تھی. الیکشن سے پہلے بھی چناؤ سے متعلق رائے میں گونزالیز کی واضح سبقت کا اندیا دیا گیا تھا. محکمہ خزانہ کی طرف سے جاری کیے گئے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پہلی مرتبہ امریکی وفاقی حکومت کا کل سرکاری قرض 35 ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے. جمعے کو کل سرکاری قرض کے بقایا جات 35 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئے تھے. یہ اعداد و شمار سابقہ کاروباری دن سے ڈیٹا کے ساتھ ہے. ہر کاروباری دن کے ساتھ اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں. چین کے جنوب مغربی ہنان صوبے میں 15 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب مٹی کا تودا ایک سیاحتی علاقے میں واقع ایک مکان سے ٹکرا گیا، جبکہ اس علاقے میں شدید بارش ہونے کی اطلاع ہے. پیرا تیراک جیا رائے اکیلے انگلش چینل کامیابی کے ساتھ تیر کر پار کرنے والی دنیا کی سب سے کم عمر اور تیز رفتار خاتون پیرا تیراک بن گئی ہیں. 16 سال کی اس تیراک نے انگلینڈ کے ایبوٹ کلف سے فرانس کے پنٹے کورٹ کا 34 کلومیٹر کا فاصلہ اتوار اور پیر کو 17 گھنٹے 25 منٹ میں مکمل کیا. جیا ایک عالمی اوپن واٹر پیرا سوئمر ہیں اور اس میں ان کے نام عالمی ریکارڈ بھی ہے. بھارتی بحریہ اور ممبئی کے مغربی بحری کمانڈ نے ان کی اس کامیابی پر مبارکباد دی ہے اور انہیں نیک خواہشات پیش کی ہیں. بھارت اور سری لنکا کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج شام سری لنکا کے پلے کیلے بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. بھارت کو 3 میچوں کی سیریز میں سبقت حاصل ہے. دوسرے T20 میچ میں نئے کپتان سوریہ کمار یادو کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے کامیابی حاصل کر کے سیریز میں جیت کو یقینی بنا لیا تھا. بھارتی نشانے باز منو بھاکر اور سربجیت جوت سنگھ آج پیرس اولمپکس میں 10 میٹر ایئر پسٹل مکس ٹیم مقابلے میں بھارت کے لیے دوسرا تمغہ حاصل کرنے کی خاطر مقابلہ کریں گے. کل 10 میٹر ایئر پسٹل مکس ٹیم مقابلے کے فائنل میچ میں دونوں نے کانسے کے تمغے کے لیے کوالیفائی کیا تھا. آج دوپہر ان کا سامنا جنوبی کوریا کے او اے جین اور لی اون ہو سے ہوگا. کل کوالیفائر میں مقابلے میں تیسرے مقام پر آنے کے بعد فائنل میں اپنی جگہ پکی کر کے منو بھاکر ایسی پہلی بھارتی کھلاڑی بننے کی کوشش کریں گی جس نے ایک دہائی میں کسی ایک اولمپک میں 2 تمغے حاصل کیے ہوں. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان.
شکریہ کلیم. دلی سے شائع ہونے والے اردو کے تقریباً سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے کل پارلیمنٹ میں ہوئی بحث کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. بحث کے دوران رجندر نگر کوچنگ سینٹر حادثے کا معاملہ بھی اٹھایا گیا جس میں 3 طلبہ کی موت ہوئی تھی. ارکان پارلیمنٹ نے معاملے کی تفصیلی جانچ اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے دوران دیے گئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے جس میں انہوں نے بھارت بحر الکاہل خطے کو آزاد، کھلا، محفوظ اور خوشحال بنانے پر زور دیا ہے. وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے 51.2% ووٹوں کے ساتھ تیسری بار صدارت انتخاب جیت لیا ہے. اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اہمیت دی ہے.
خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں 2024-25 کے مرکزی بجٹ کے بعد کی کانفرنس سے وکست بھارت کی جانب سفر کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے. دلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے ان طلبہ کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے جن کی ایک کوچنگ سینٹر میں پانی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی تھی. کواڈ کے وزرائے خارجہ نے لشکر طیبہ اور جیش محمد سمیت اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل دہشت گرد گروپوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اور بھارت کی نشانے باز منو بھاکر اور سربجوت سنگھ آج پیرس اولمپکس میں بھارت کے دوسرے تمغے کے لیے 10 میٹر ایئر پسٹل مکسڈ ٹیم مقابلے میں حصہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔